करना, सत्शास्त्र का स्वाध्याय करना, इनमें बहुत सी बातें हैं। एक सत्संग, एक नाम जप, एक एक चीज अनंत पापों का नाश करने वाली शक्ति है। उनसे हो जाए मनुष्य के बिगाड़ क्या होता है, ये जो उल्टा चलता है वो चलना छोड़ता नहीं, ये महान पाप है। पहले कितने पाप, कितने दोष हुए सब मिट जाएंगे, परंतु नया काम करता रहे तो वो मिटे कैसे, वो नया नया करते रहे होगा। ये तो कल बताया भाई, मन में ये पूरी भावना क्यों रखो, स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। अगर ये जो बात ठीक रहे, अच्छा अच्छा काम करो, स्वभाव खराब रह करके राग और द्वेष ईर्ष्या करते रहो, लोभ और काम और शोक चिंता में फंसे रहो, तो नए नए पाप पैदा होते रहेंगे। उनका नाश अगाड़ी न करोगे तब होगा। पुराने तो एक भगवान के नाम करने से अनंत पापों का नाश हो गया है, और फिर नया करता रहे, अब इसका क्या अंत हो। और करो, विद्या करो, श्रवण करो, पूजा करो, भगवान करो, शंकर भगवान का पूजन करो, शिवलिंग पूजन के लिए, शालग्राम जी के पूजन के लिए, हनुमान जी के लिए बहनों माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसा आता है। देखो नाम दे दिया करो तो बता हजार चालीस में गीता श्लोक पूछो तो वहाँ के नाम जरूर देना चाहिए और हरेक पूछो मेरे को कहने में शर्म नहीं आती आपको नाम देने में क्या शर्म क्या बेइज्जती हो जाएगी डरते गीता का जो श्लोक पूछा है उसके अर्थ नौ तरह के मैंने सुने और बड़ा विवादास्पद श्लोक है ये कई टीकाएं मैंने दे दी अभी की टीका बनाई हुई हिंदी की संस्कृत की ऐसी कई टीकाएं दे दी ठीक समाधान नहीं होता मेरे जो जती है बात वो बात भी आपके सामने मैं रख दूं परंतु बात है कि सभा तो इतनी बड़ी और गीता के श्लोक की जहां मर्म की बात बताई जाए तो कितने समझे थोड़ा तो पूछा पूछने वाला क्यों है तुमसे कब वो तो समझेगा कि नहीं तो मैं तो सरलता से बात कहता हूं मेरा ऐसा विश्वास रहता है कि हरेक आदमी समझ सकता है अर्थ गहरा बहुत है इसमें संदेह नहीं ऐसे धर्म के तत्व को गहना कर्मनोगति भगवान ने कहा किम कर्म किम अकर्मेति तवलोक्यत्र मोहिता इस कर्म के तत्व जानने में बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं ये भगवान कहते हैं स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं किम कर्म किम अकर्मेति तवलोक्यत्र मोहिता सोलह श्लोक चौथे अध्याय के सोलह श्लोक पदवा ने कहा एवं व्यापार कर्मा पूरे मुमुक्ष भी पहले जितने मुमुक्ष हुए उन लोगों ने भी ऐसे जानकर जो पीछे विविध नया चौदह श्लोकों तक ऐसे जानकर जो कर्म किया है तुम ही कर्म कर पूर्व से करता है वैसे तुम भी कर तो कर्मों के जानने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है कर्म क्या जो हम काम करते हैं पाप के सिवा जितने कर्तव्य कर्म करते हैं खाना पीना बैठना उठना सोना जगना ये सब जितने काम के सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन है ऐसी बात करानी हम भोजन करते हैं उसे भगवान भी लेंगे सब पीते हैं भगवान भी लेंगे व्यापार करते हैं व्यवहार करते हैं नौकरी करते हैं उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होगी कहते हैं सुनते हैं इससे भी परमात्मा की प्राप्ति होगी साफ निश्चित साफ कर्म न करें अरे कर्मों को करते हुए इसमें जानने की बात है वो जानने से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए ऐसा गहरा तत्व भगवान ने कर्म का बताया है गीता में तीसरे अध्याय में तो कर्म करने पर जोर दिया है और चौथे अध्याय में कर्मों के गहरे तत्व को जानने पर जोर दिया वो तो जानने का प्रकरण है इसमें भी ये सोलह सत्रह अठारह इन श्लोकों में बहुत जोर और तेईस तक सात श्लोक अलग है तेईस तक ये प्रकरण विशेष बात है और ऐसे देगा तो अध्याय की समाप्ति तक है और उस पर भी पूछा तो पांचवा अध्याय तक है समाप्त तक है ऐसा तेरा प्रकरण है उनमें सबसे कठिन अठारह श्लोक है और अठारह में भी एक पंक्ति सोलह अक्षर कर्मणी अकर्मीय पशेद अकर्म से कर्मीय कर्म में अकर्म देखना अकर्म में कर्मी ये उल्टन बन जाता है इस बात से कई तरह के टीकाओं में कई तरह बन गई ये आप लिखते हैं कि आप नहीं लिखते तो वे पढ़ी है और संत महात्माओं से अच्छे अच्छे पुरुषों से मैंने गीता सुनी है गीता के गहरे भावों को जानने वाले पुरुषों से गीता सुनी है और गीता वक्ताओं से सुनी है गीता तो सब की बातें सुनने के बाद में जो मेरे मन में जती है वो बात आपके सामने कहूँ। अब सब बातें कितनी है ना, तो बाबा एक साथ मेरे को याद आती है, ना मैं कह सकता हूँ। गीता के श्लोकों की बात कहने लगता हूँ तो मेरे नई नई पैदा होती, इस बार मैं कभी कभी कह दिया करता हूँ कि गीता की व्याख्या हर पेड़ करके मैंने नहीं कही, लेकिन मेरी तृप्ति हो जाके फिर बात मैं कह दूँ, मैं कह नहीं पाया हूँ। विचित्र अर्थ भरा हुआ है, विचित्र अर्थ। अब आशीर्वाद, अब ध्यान देना, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये तो 18वां श्लोक। पहले आपको बताया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसमें पंडित जी मोहित हो जाते हैं, ये है 16वां श्लोक। इस वास्ते 17वें श्लोक में कहा, कर्मणोहि बोधव्यम् बोधव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गहना कर्म मोहि। कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए, बड़ा जरूरी है। तीनों के अलग अलग बोधव्यम 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 का सामान्य बात की जगह कर्म अकर्म जरूर जानना चाहिए। नहीं, कर्मों को विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, बोधव्यम से विकर्मण विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, और अकर्मणस्थ बोधव्यम अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। क्यों कर जाने अकर्मणों को भी कर्मों की ऐसे कह करके 18वां श्लोक का, कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, विचित्र विचित्र व्याख्या की है। पहले ये समझो कि कर्म शब्द से क्या है, कि शास्त्र ने आज्ञा दी है, जिसका निषेध नहीं किया है, ऐसे सामान्य शास्त्रीय कर्मों का नाम है कर्म। वो नित्य कर्म होते हैं, नैमित कर्म होते हैं, कार्म कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं, अवश्य कर्तव्य कर्म होते हैं, बड़ा झगड़ा है। परंतु शास्त्र ने किसी का निषेध नहीं किया और जरूर करना चाहिए आज्ञा दी है, कैसे के नाम पर नित्य न समझे, इसके हवा को जरूर बहुत प्यार करता है। नया आदमी बोल अपने इतना शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा, लोग की मर्यादा, अपना भरण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जो करना चाहिए उन कर्म नाम है कर्म। और विरुद्ध विकर्म, इससे विरुद्ध तो शास्त्र निषेध कहते हैं, मर्यादा के विरुद्ध है, मनुष्य को करना नहीं चाहिए, ऐसे कर्म का नाम है विकर्म। विरुद्ध कर्म विकर्म, ये समझ लें। और अकर्म नाम किसका है, ऐसी एक अवस्था होती है जिसमें कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधनकारक नहीं होते, कर्मों का अभाव हो जाता है, कर्म कुछ नहीं करते, ये तो कर्मणा बचते जंतु। कर्मों से मनुष्य बंधता है, पाप कर्मों से बंधकर नरकों में 84 लाख जोड़ी में जाता है, शुभ कर्मों के करने से बंद करके स्वर्ग में जाता है, पर पाप कर्म नीचा जाता है। अब अकर्म क्या, ना वो स्वर्ग देते हैं, ना नर्क देते हैं, ना मन जन्म देते हैं, ना पिता जन्म देते, किंतु उसकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाते हैं, कर्मों से सदा के लिए पिंड छूट जाता है, जन्म मन से दुखों से सदा छूट जाता है, उस कर्म का नाम अकर्म। तो कर्म के तत्व को भी जानना, अकर्म के तत्व को भी जानना, विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, ये भगवान ने कहा। वो जानने की बात बताई, कर्मणि अकर्म या पश्येत, कर्मण कर्म में जो अकर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखना, मनो सब काम करे और ये कर्म बांधने वाले न हो, जन्म मरण देने वाले न हो, ऐसी युक्ति से कर्म किए जाए, कर्म सब अकर्म हो जाए, ये इसका कारण है। और अकर्मणी से कर्म, ये अकर्म क्या, जो कर्म बांधने वाले नहीं है ऐसे ही कर्म करता है, कर्म करता हुए अकर्म रहता है, अकर्म रहता हुए कर्म करता है, ये मतलब है। कर्म करते हुए भी अकर्म रहता है, अकर्म रहता हुआ भी कर्म करता है, हमें ये अच्छा अच्छा लगे। अभी तो भूमिका बात है, अब कर्मों में अकर्म, अकर्म में कर्म क्या है, तो कर्म सब करें, मूल बात है कर्मों में अपने लिए न करें, खास बात है अपने लिए कर्म करता है वो बनता है, ये खास बात है, मर्म की बात है, मूल बात है अपने लिए न करे। अपने का अर्थ क्या है यहां, ये शरीर मात्र मैं बैठा हूं ये अपना ही नहीं है, अपना है परमात्मा का अंश, स्वयं जो परमात्मा का अंश है वो जो अपने लिए करता है तो परमात्मा का अंश फंस जाता है, क्योंकि कर्म करने की क्रिया की शक्ति सब की सब है प्रकृति की, परमात्मा में और परमात्मा के अंश में, ये क्रिया नहीं है, परिवर्तन नहीं है, नित्य निरंतर है, जो का जो रहता है, और वो अपने लिए करता है तो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, अपने लिए क्रिया पड़ा तो कर्म करते हुए अपने लिए न करे, उसमें करने को ईमान न हो, फलेच्छा न हो, आसक्ति न हो, कामना न हो, विषमता न हो, इतना कह दो तो लोगों को हरकम पड़ती मिल जाए, ये याद करना पड़ते, कामना आसक्ति कृष्णा विषमता पक्षपात फलेच्छा ये न हो, वो कर्म अगर हो जाए वे कर्म बाद के, तो हमें एक ही बात कह दी, अपने लिए कर्म नहीं करता वे कर्म उसको बाधते, तो किसके लिए करे, कि संसार मात्र मिला है ना, इसमें एक बात कह दू, ध्यान देकर सुने उस बात को, ये जो शरीर को अपने अलग मानते हैं कि ये मैं अलग हूं, यहां गलती होती है, एक धातु से बड़ी हुई चीजें सब की सब, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अलग समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांच तत्वों से बनी हुई सब सृष्टि है, तो सब सृष्टि तो मैं नहीं, और उसका छोटा सा टुकड़ा मैं, ये कैसे, अगर मैं हूं तो सबका सब ही मैं हूं, पांच भौतिक सृष्टि पृथ्वी और सबका सब मैं, पर वो मैं नहीं हूं तो एक टुकड़ा मैं कैसे हुआ, बिल्कुल एक धातु है सब संसार मात्र की, तो एक टुकड़े को लेकर मैं करता हूं कर्म, मेरे लिए तो फंसेगा बंधेगा ही, हमें अपने को मान लेना है संसार से, यहां अनर्थ होता है तो वही बंधन होता है, तो अपने लिए करना ही नहीं, तो किसके लिए करना, तो जब सब संसार है जिस धातु का उसी धातु का ये है, तो इसके द्वारा कर्म संसार के लिए ही होना चाहिए, सबके लिए भजन ध्यान जब कीर्तन सत्संग स्वाध्याय जो कुछ करें दुनिया मात्र के उद्धार के लिए, जैसे मनुष्य का मेरा कल्याण हो जाए ऐसे भी मात्र जीव का कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार का अंश है उसको देखो तो आप कर्म करते हो और फलता आते हो, अगे ये न्याय है, कोई भी व्यक्ति बिना संसार की सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकता, लाखों करोड़ों की जिसके पास न हो, राज्य वैभव हो, त्रिलोक का राजा हो, बहुत धन है बहुत संपत्ति है, वो बिना इस समष्टि शक्ति के सहायता के लिए जी नहीं सकता, काम तो कर ही जा सकता, क्या वो श्वास नहीं लेगा, तो क्या श्वास उसकी बात का है क्या, है किसी का हल्के श्वास में नहीं है, सामान्य सब मात्र संसार का प्राण है ये सबको हवा मिलती है, सबको श्वास मिलता है, उसमें सबके हिस्से की पार्टी आई श्वास लेता है, वो कैसे मानता कि मेरा श्वास है? और घूमता है तो पृथ्वी मेरी है, एक व्यक्ति की है पृथ्वी। प्रकाश लेता है तो क्या किसी एक व्यक्ति का प्रकाश है ये? अन्न खाता है तो क्या आपका ही है? जो जल पीता है तो क्या आपका व्यक्तिगत व्यक्तिगत जल है? अपने व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, अपनी व्यक्तिगत मानना है करा सकने में क्षमा करना कई मानी है। और लाल जी ने चोर कहा है, चोर पेट भरा अधिकम यो भी बन जाता है, पूजन करने के बाद किसी चीज को भी अपना अन्न को मानता है, वस्तु को मानता है, किसी को अपने निर्वाह के मात्र से अलग चीज को जो अपनी मानता है, आधिपत्य कहना मेरी है, वो चोर है, जिंदा पड़ेगा उसको। ये कहा नारद जी ने ही मारा। अधिकम यो अभिमन्य का अभिमान करता है कि मेरी ये तेरी कहते हैं, जन्मा कर तू साथ में चला नहीं और मरेगा तो साथ में भी जाएगा नहीं, लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, भूख लाएगी और रहते हुए मन के मुताबिक शरीर को बढ़ा नहीं सकता और मरे हुए शरीर को रख नहीं सकता।
है किसी में ताकत ऐसी कि शरीर को अपना रख लें? कम से कम कम से कम मरने तो गए ही नहीं, ना इसको रखने की ताकत है, ना इसको बदलने, थोड़े सा रंग थोड़ा गोर कर दे, दो साल तेरा सुंदर बना दे, इसमें परिवर्तन करने की ताकत नहीं, रखने की ताकत नहीं, बनाए रखने की ताकत नहीं, और इसको इधर उधर कर दे वो भी ताकत नहीं, और लाया नहीं माँ के पेट में बना है यहाँ और छूट जाएगा यहाँ, साथ में लाया नहीं, साथ में ले जा सकता नहीं, फिर शरीर मेरा, ये क्या ईमानदारी है? थोड़ा गहरा विचार करो, और शंका हो तो नोट कर लेना, तुझे पूछ लेना बीच में नहीं, खूब शंका कर लो। तो ये व्यक्तिगत अपना मिला हुआ है वो अपने लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए मिला है, और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, पहले अपना था नहीं, पीछे अपना रहेगा नहीं, तो बीच में अपना कैसे हुआ? तो ये दिया गया है तो वो मिला है, मिली हुई अपनी नहीं होती, दिया गया है संसार की सेवा के लिए। तो मैंने बात कही वो याद करो कि भगवान के देने का ऐसा ढंग है कि जिसको दे दिया जाए वो अपना ही समझता है, तो देने वाले की महान उदारता है, उस उदारता का दुरुपयोग कि मैं नहीं ज्यादा कही, पूजा पूरी देर से एहसान करेगा, तेरे मैंने पढ़ाया, तेरे को मैंने ऐसा किया, छोड़ा थाने क्या किया, मैं थाने इसको धन कमायो, भगवान के सब छोरा छोरियों को प्रबंध करते हैं, किसी को कहा कि मैंने किया तुम्हारा, अरे किया क्या है, उसको दिखता अपना ही, अपना ही शरीर दिखे, अपनी इंद्रियां दिखे, अपना ही श्वास दिखे, अपना ही मन दिखे, अपनी बुद्धि दिखे, ये तुम्हारी है, तुम्हारी कैसे है भाई? आंखों के चश्मा लगता है क्यों भाई? तेरी आंख चश्मा क्यों लगा? तेरी आंख ठीक कर रहे, तो मेरी कहां है? पहले थी नहीं, फिर रह गई, बीच में मिली गई, मेरी है तो कब्जा ही कर बैठा, इसको बेईमान नहीं कर, क्या कहेंगे इसको? अब इसके द्वारा जो काम होता है शरीर से करे, चाहे मन से चिंतन करे, चाहे बुद्धि से करे, और चाहे काम को ध्यान लगा समाधि लगा दे, एकाग्र हो जाए, तो युवा तो शरीर को लेकर ये तेरा कैसे है, ये संसार का है, तो संसार के लिए ही करना, अपने लिए बिल्कुल न करना।
तो कर्म आपको काम है।
सफलता हो गई, वो बुद्धिमान है और मेरे लिए करता हूं फल मेरे को मेरे बुद्धि नहीं है तो फंसेगा। अच्छा योगी योगी है, योगी किसका नाम है, समस्त में योग उचित है उसे समता रहेगी और दुख संयोग वियोग योग संग काम दुखों के संयोग का वियोग का कोई दुख होगा ही नहीं, इस वास्ते योगी। और तीसरी क्या बात कहते हैं, कृष्ण कर्म कृत, वो संपूर्ण काम कर लिया उसने, मानो कृत कृत्य हो गया, करना बाकी नहीं रहा, अपने लिए करता रहेगा तब करना बाकी रहेगा ही और उसके लिए करना बाकी नहीं, कृत कृत्य हो जाएगा। सर्वबुद्धिमान मनुष्येषु युक्त है और कर्म वो योगी है, संपूर्ण काम करने वाला, उसके लिए करना क्या बाकी रहता नहीं, वो कृत कृत्य हो जाता है। ये कर्मयोग की प्राप्ति हुआ, इस बात को समझना है, कर्म ही अगर नहीं वास्तव में स्वयं आप करते नहीं हो, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर के द्वारा करते हो और इस शरीरों की संसार के शरीरों के साथ एकता है। अब एकता तो है संसार के साथ और करते हो अपने लिए, ये गलती होती है ना। इस वास्ते सब संसार के लिए करना है, सबके हित के लिए करना है, अपने को भगवान ने दी है वस्तु, ये अपनी व्यक्तिगत आपको कब्जा करने के लिए नहीं दी, इस पर अधिकार जमा लो इस वास्ते नहीं दिए, जमाओ तो अधिकार रहेगा नहीं, तो अधिकार ने दी नहीं, अधिकार दिया है सेवा करने का, ये सामग्री थी इसके द्वारा दुनिया की सेवा कर, अपना कोई अधिकार नहीं है, केवल इतना अधिकार है इनके द्वारा करो सेवा करो, तुझे ये अधिकार है, कब्जा करना नहीं, अधिकार जमा लेना नहीं, ऊपर आधिपत्य जमा लेना ये अधिकार नहीं, इस बात के रख सकते ही नहीं और करने में कोई बाधा है ही नहीं, मना है ही नहीं, ये ऐसा इस कर्मणीय कर्मीय पैसे अकर्मीय कर्मी स्वबुद्धिमान मनुष्यु संयुक्त कर्मी संयुक्त कृष्ण कर्मी कर। इस वास्ते की व्याख्या पांच श्लोकों में इसका विवेचन किया, जिसमें विवेचन खास करके और का अकर्म का दिया, क्योंकि आरंभ में सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुधार, वो कर्म कहूंगा जिससे अशुभ से मुक्त हो जाएगा, मन अकर्म हो जाएंगे। ये खास लक्ष्य भगवान है। ये 16वां श्लोक है, उससे ये प्रकरण चला है। गीता पाठ में कुछ देख लो, कंठ से याद कर लो। 32वें श्लोक में चला है, 17 श्लोक है। 15वें श्लोक के बाद 16वें श्लोक से आरंभ करके और 32वें श्लोक, कितने श्लोक कितने होते हैं? 17 श्लोकों में। उसमें क्या था? 25वें श्लोक कैसे? एवं बहुविधा यज्ञा वितता मनोमुखे करो जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, सत्य कर्म प्रलोक्षा में यज्ञात्वा मोक्ष से। ये उपक्रम हुआ और वे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, ऐसे जानने से मुक्त हो जाते। 17 श्लोकों का प्रकरण है ये। समझनाय तत्व को कर्म ज्ञान विद्यान सर्वान, सब कर्म जन्य है, कर्म से कर्म जो तीर्थ यज्ञ 14 अथवा 12 यज्ञ है जो आगे चलेगा 24 से लेकर के और 31 तक। ये सार बात है। अब इसकी व्याख्या करते हैं, यज्ञ सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके संयत आरंभ सबके सब सांगोपांग आरंभ किया जाए, ठीक रीति से कर्म किए जाए, पर कामना संकल्प से नहीं। कामना कोई नहीं, संकल्प ना कुछ नहीं, अपने लिए काम संकल्प वर्जिता। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं, इस ज्ञान से वे कर्म दग्ध हो जाए, कर्म हो गए अकर्म हो गए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितं बुधा, उसको बुध ना पंडित लोग भी पंडित कहते हैं, पंडितों का पंडित है वो। गृहेशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, सभायां पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता। घर में एक आदमी होता है, घर वाले उसको पूछ कर सब समा सला वे काम करते हैं, तो घर का पंडित है वो, अपने अपने घर का पंडित। देहेशु पंडिता, अपने अपने घर पंडित होते ही हैं। मुझे कर आ रही, उसको पूछो कुछ काम करो, वो घर का पंडित। और दूसरा केचित मूर्खेशु पंडिता, बिल्कुल मूर्ख है, लंथ है, उनमें पंडित होता है। गांव में कागज आ जाए तो पंडित जी खेत गए हैं, आवेंगे तब बचाएंगे, क्या है इसमें, वो गांव का पंडित। तो गृहेशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, और सभायां पंडिता केचित, फिर वो सभा में बड़ी भारी सभा, जो पढ़े लिखे भी अपढ़ भी जानकार अनजान सभा में शब्द रहे होते हैं, उस सभा में पंडित होते हैं जो ठीक कर देते बता देते। और केचित पंडित पंडिता, कई पंडितों में पंडित होते हैं जो कितने पढ़े लिखे समझदार, उनमें भी पंडित होते हैं। तो भगवान कहते हैं समाहु पंडितम बुधा, बुधा नाम पंडितों का, पंडित भी उसको पंडित कहते हैं जिसके आरंभ सब तरह गए हैं, घर का काम धंधा सब कुछ करता है, पर कामना नहीं है, संकल्प नहीं है, अपना संबंध नहीं है, मात्र दुनिया के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं, उसे ज्ञान में भी अग्नि के कर्म सब जल गए, वो पंडितों का पंडित, पंडितों का भी पंडित हो। तू तो सबका करता हुआ भी कुछ नहीं पहुंचता, तो कर्मिया कर्म यही बैठे ऐसे। फिर कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फला कर्मम, कर्म फल की ओर आसक्ति का त्याग कर दे। आसक्ति में करती चुले लोग कर्मों के साथ संबंध विच्छेद करे, त्यक्त्वा कर्म फला कर्मम और नित्य तृप्त। नित्य तृप्त का मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तृप्त होने पर क्या होगा, भोजन कर देगा तृप्त हो गए, अब लोग ना पानी पी ले अब नहीं तो तृप्त हो गए। तो नित्य नित्य निरंतर रात दिन कभी अतृप्ति होती ही नहीं, तो पदार्थों से तृप्ति होगी, कुछ में से भूख लग जाएगी, वो अपने स्वरूप में नित्य तृप्ता चर्वा कर्म फलाकर्म नित्य तृप्ता। और मेरा आश्रय शरीर का आश्रय लिया है, रुपयों का आश्रय लिया है, ब्याज का आश्रय लिया है, मकान का आश्रय लिया है, बेटे पोतों का आश्रय लिया है, मेरे क्या है कमा कर कर लेंगे, मेरे मुंह के कमाई खा तो बल का लिया नहीं आश्रय, मेरा बिल्कुल किसी का आश्रय नहीं, आश्रय की गल है, सब आश्रय चेतन का लेते हो, चेतन ले नित्य कृतर निराश कर्मणि अभी प्रवृत्त होगी, शब्द लगा कर्म करता है तो नहीं किंचित करो उसे कुछ नहीं करता, सब कुछ करता है कुछ नहीं करता, तू आश्रय नहीं, हल्की इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, कामना नहीं, तो कर्म अकर्म हो कर्मणि अभी प्रवृत्त होगी, नहीं तो किंचित करो निराशी ये कृपा निराशी आश इच्छा कुछ भी मन में पाने की लेने की मान की बढ़ाई की जीने की कोई इच्छा नहीं, निराशी ये वित्तात्मा शरीर इंद्रिया मन सब गलती बस में अंत सर्वपरिग्रह वो बुद्धि से संग्रह है ही नहीं बात में कोई चीज, तो फिर काम आवेगी, फिर सुख लेंगे, फिर भोगेंगे, ऐसी कोई भी का किसी बात का संग्रह नहीं अपने सुख के लिए, चल सर्वपरिग्रह शारीरिक केवल कर्म केवल शरीर निर्वाह का काम खाना पीना आदि कर लेता है बस, नापनोति के लिए समझ केवल निर्वाह मात्र करता है तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप ये तो बात ही नहीं है यार, तो भाई सामान्य पाप है तो उसको पाप होता है, चलते हैं तो पीढ़ी बन जाती है, व्यापार करते हो 10 दुकान रिजाल में करोगे तो कुछ ग्राहक फटेंगे, भिक्षा के लिए एक साधु जरा दूसरा चला जाए तो उसे भार पड़ेगा, कोई आरंभ ऐसा नहीं जिसमें दोष न हो, पर वो केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए करता तो वो पाप लगता, पाप लगता नहीं इस बात पाप होता है, ये तो लगता नहीं कैसे पहले, तो पाप ऐसा सर्वानंद आई दोष है ढूंढ लेना उनकी वाद्रता अठार में ध्यान में भगवान ने कहा जितने आरंभ है सबके सभी दोष ही होते कैसे, कहीं आग सुलगा हो धुआं होगा, जैसे आग सुलगा कहीं धुआं होता है ऐसे कोई काम करो तो बिल्कुल दोष आ ही जाएगा उसमें, परंतु किसी से कुछ भी लेना नहीं मिल रहेगा है तो उसको बस पाप नहीं लगता तो कर्म नहीं बनता है, उसमें बंधन नहीं होगा, विदिशा लाभ संतुष्ट काम किया व्यापार किया खेती की जो कुछ काम किया अरे उससे जो मिल जाए उसमें संतोष, धान हो जाए तो आनंद, न हो जाए तो आनंद, रुपया मिल जाए तो आनंद, न मिल जाए तो आनंद, बेटा पोता हो जाए तो आनंद, मिल जाए तो आनंद, जो हो जाए ये तो होता ही रहेगा, अब कहां तक तो रोगेंगे कहां तक राजी होंगे बताओ, ये तो रोजा नहीं होता ही है, जन्म कही है मरते ही है आता ही है जाता ही है नफा ही है नुकसान ही है आदर भी है निरादर भी है प्रशंसा भी है निंदा ही है, ये तो होते रहते हैं, इनको क्या क्या इनको पकड़े, इस वास्ते निश्चा लाभ जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर और नित्य चिंता निर्षा लाभ संतोष पर द्वंद्वा भी तो द्वंद्व जो राग देश और हरक शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख इनसे पूछा उसको, ये सब आते रहते आने जाने वाले आप रहने वाले इसमें चूत सुख भी होते क्यों दुखी सुख आ गए बड़े फूल गए राजी हो गए दुख हो गए नाराज हो गए, अरे आने जाने वाले क्या करते हो बिरंग पर खड़े मोर तो बहुत आ गई नाचने लग गए मोर से कोई नहीं रोने लग गए, अरे क्या हुआ था मोर से नहीं आई तो धूल कम हो गई है क्या हमारे ऐसे धन आ गया था हमारे राजी हो गए धन चलेगा रोने लग गए, अरे तू तो है जरा मेरा राजा तेरे क्या तो लाभ हो गया क्या नुकसान हो गया, लोगों ने प्रशंसा कर दी राजी हो गया निंदा कर दी नाराज हो गया, अरे आने जाने वाले से तू रहने वाला क्यों फंसता है क्यों रोता है, समय असिद्ध हो असिद्ध हो जाए कार्य सिद्ध हो जाए असिद्ध हो जाए फल मिल जाए न मिल जाए सम कृतवा भी मैंने बद देते वो करके बंधता नहीं तो कर्माकर्म हो गए ना,
अस्तित्व की ननिबद्ध दे कैसी बढ़िया है। गत संघ से मुक्त से गत संघ है जिसका आश्रित नहीं और मुक्त है छूटा हुआ है सर्व का गत संघ से मुक्त से ज्ञाना वर्ष के बता ये जो विवेक है अलग अलग कर्मों का और स्वयं का क्रियाएं सब प्रकृति है निग्रह और वो प्रकृति का अभी है ज्ञान और क्रिया का जिसके व्यवहार हो गया और ज्ञानावस्थित उसमें स्थित है सिर्फ उस ज्ञान में यदि आए आकर कर्म केवल दुनिया के हित के लिए कर्म करता है सब खाना पीना बैठना उठना सोना देना सब दुनिया के हित के लिए दुनिया की परंपरा शास्त्र की परंपरा लोक परंपरा वंश परंपरा सूरत से सुरक्षित रूप से रहे सब अच्छे काम करे सबका कल्याण हो इसलिए कहते हैं यज्ञ आकर कर्म समय अनंत जन्मों के कर्म सब लीन हो जाते हैं तो अकर्म हो जाते हैं। कहते अकर्म में कर्म हुआ है तो अब अकर्म में कर्म हुआ तो कर्म में अकर्म क्या हुआ कि इतना सब करता हो ये बंधता नहीं तो अकर्म होकर भी करता है तो अपनी स्थिति में है जो का जो है कर्म करता है ना वो कर्मों में कर्म होता है ना अकर्म में अकर्म होता है कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म मानो कर्म का विभाग अलग है अपना विभाग अलग है करे तो भी उसी तरफ है न करे तो भी उसी तरफ है आप है जो का जो है तो विकर्म का विभाग नहीं है कर्म ये बोध उद्यम बोध उद्यम से विकर्म तो अकर्म से बोध विकर्म का क्या है कहते हैं विकर्म किसको कहते अर्जुन ने पूछा है अथ के न प्रयोग तो यम पापम चलति पुरुष अनित संग भी पाप करना नहीं चाहता और फिर भी वो पाप कर बैठता है वो पाप कराने में हेतु कौन है तो भगवान ने कहा काम ऐसी कामना संसार की कामना तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प गर्जिता तो पापों का बाप हुआ कौन ये कामना जैसे को विश्वास दिया था पाप का बाप कौन है लोग कामना सुख भोगना और संग्रह कर ले हमारे अनुकूल हो जाए जो ये संपूर्ण पापों की जड़ ये जहां से कार दिया कहां से पाप आज पाप ये जो कहते हैं लोग चोर को मारे चोर की मां को ही मार गए चोर की मां को ही मार देने का अर्थ ये नहीं है कि जिसने चोरी की उसकी मां को मारो ये अर्थ नहीं है मानव जन्म क्या अपराध किया चोर को मारो ना चोर की मां ने मार दो मार का अर्थ है जिससे चोर पैदा होते हैं उसको मार दो तो चोर सब पैदा होते हैं मैंने भूमा की और संग्रह की इच्छा की इसको मार दो बच्चे अब जन्म करेंगे मां के मारने का मतलब अब चोर नहीं जन्मेगा तो कामना है संसार की भोगों की इच्छा है रुपयों की ये है सब तो भी उसे क्या निवेदन करे पूरा करकर निकाल कर
करा दो।
हेलो
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
सब छोड़ दो तो बाबा जी बन गया क्या सब उसमें त्याग कैसे करेंगे बताओ। अरे त्याग स्वरूप से त्याग त्याग नहीं होता है। अगर स्वरूप से ही त्याग त्याग हो जाए तो मरने वालों का सबका कल्याण हो जाए। शरीर भी छोड़ जाते हो। अरे पत्रकार है न तिथि है न समाचार है कोई आदमी अगर कहता है इतना त्याग किया किसी खबर ही नहीं तुम्हारा कल्याण हो जाए तो स्वरूप से छोड़ दिया। मन में मेरा पड़ा पड़ा वो है बांधने वाला। मन में मेरा पन मत रखो बाला तो अब लाखों रुपया रहे करोड़ों रुपया आपके पास न रहे पर अपना नहीं परिवार 200-500 आपके आदमी परंतु भीतर से हम तो यहाँ आए हैं और चले जाएंगे। भीतर से मेरा पन नहीं तो दूर होगा। अगर कभी साथ में रहते हैं मेरा कैसे नहीं माना जाए तो मैं भी इतने भाई और बहनों के साथ संबंध जोड़ दूंगा। हमारे लिए आए हैं सभी हमारे से बात सुन रहे हैं। अब जाने लगे मैं रो रही हूँ कितने आदमी चले गए ये हमारे आदमी चले गए बोलो हमारे है कि नहीं क्यों आए सिवाय मेरे और तीन भी आए कोई रुपया मिलता है आपको कुछ मान चाहिए कुछ में आराम हो ज्यादा सुख मिलता है क्या जो घर छोड़ गया है क्या हम तुम्हारे लिए आ रहे तो हम इनके लिए कहते हैं ये हमारे लिए आ रहे तो हमारे हो गए अब जाने लगे सोने के लिए हमारा आदमी चले गए। बोलो ठीक है ऐसे आप चीजें बोल तो सब रखो घर इतना बड़ा हो गया इतना दृश्य हो इतने परिवार हो गए तो अपना कुछ नहीं अपनी जो बारी सुना देने की है उनकी बारी सुनने की है अपनी अपनी बारी निकाल दे दो। ऐसे माँ बाप की सेवा कर दो माँ बाप उनका पालन पोषण कर दो ब्याह कर दो सर पार्टी आए दे दो और देश बनना पर भी पढ़ा होगा हर दिन तो इससे क्या बात है लगी इस देश में एक कब्जा कह नहीं हमारी बात सुननी चाहिए हमारी बात माननी चाहिए क्यों साथ हमारी बात क्यों मान फिर मानो उनकी बात अरे मानो तो दोनों मानो जहां उनका अधिकार है उनकी बात मानो जहां अपना अधिकार है कोई बात को पर मनाने का आपको अधिकार नहीं है मानने का आपको अधिकार है। स्त्री की मानो बेटों की मानो आएगी हो जाएगी माँ बाप की भतीजों की इनकी बात मानो जो मानने लायक है न्यायुक्त है शांत की आज्ञा के अनुसार है वो बात मानो। तुम शास्त्र की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से तुम्हारी भी हर से नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं शास्त्र की आज्ञा है बात मान से तो पति को पत्नी की बात माननी चाहिए पत्नी को पति की बात माननी चाहिए तू साधु की आज्ञा और हम गलत हो गई व्यक्ति से हमें कुछ लेगा नहीं ये तो ठाकुर जी के रहता ये भगवान के हैं भाई तुम भगवान हम भी भगवान के तुम न्याय काम करो मैं करूँ और मैं कहूँ न्याय आप करो आप करें ना करें हम तो आपका पालन करें बस ठीक हो जाए अपने करने का तो तैयार रहे दूसरे करने की आशा न रखे दूसरा करेंगे हमारे कहना आशा रखो तो रोना पड़ेगा निराश ही देता अपना काम सीखने से करें तो हमारी हंडी चल जाएगी कि नहीं जो नहीं करता उसी खुशी हो जाता ना अपना करते ठीक पूरा काम कर दिया फिर बोल नहीं आनंद हो गया अपना काम ठीक करो उसे सहना मत रखो संसार की याद नहीं आ रही एक आंध बैठे मन नहीं लगता ये शिकायत मिल जाएगी याद ही क्यों आ रहा था काम कर दिया दूधी समाज रखते ही नहीं बिल्कुल समझ ले गए चित्त की संतुलन सब मिल जाएगी कुछ कुछ लेना है कुछ कुछ पाना है तब ये बात होगी तो सब कुछ रखो वृद्ध है जो का जो रखो तेज वस्तु रुपये पैसे सब रखो अरे हमारा नहीं इनका है भगवान का है इनकी सेवा में लगाते रहो लगते लगते बाकी ले जाए मजा ठीक और चले जाए तो वो ठीक माल पर जगह है, ज्यादा है तो ज्यादा लगाओ, कम है तो कम लगाओ, और नहीं है तो जयराम जी अपनी क्या उसकी पंचायत है, ज्यादा लगा लें कम लगा लें। ये माता बहना गोरी होती है, हमारे पास तो हम भी लगा लें तो धन ले फिर लगा ले, आप करें तो भगवान ने किया ही नहीं, फिर आप भी छूट की देगी तो फिर लगाने की जिम्मेवारी नहीं, भगवान का भजन करो अपने लगाने की है ही नहीं। तो लगा कैदा संग्राम सुड़े धनरी धनियाणी कर्म सुकृत भजराम वेले बहते पानी बहते पानी वेले कृपा कभी महाराज पर कार्य पहले जीव लो क्यों जाए तो आज क्यों जाए तो आज काल की जाए में जानी कैदा संग्राम सुड़े धनरी धनियाणी धन आय छूटते तो पानी धो रहा थी तो कम से बैठ जाए क्या पता है धनी के पास धन है आजम क्या ये रुपये क्या गया तो बैठे पानी हाथ धो लो बेटा ये रुपये का है। अब संचय रखा था हम तो इधर सांस देंगे जोरदार जोरदार जो पिता इधर निकलना तो निकल जाए एक साल का दो तीन साल खुला नहीं रह जाएगा पर धन तो निकल गया हैं करो गो व्यापार में तुझे में काम में घटा ले गया कहाँ पर रखो कहाँ तक कहा बच्चा को बाल संभाल कर रखो ठीक करे प्रबंध करो ध्यान भी पैदा करो शारीरिक मजबूत बनाओ बढ़िया अच्छी तरह से परंतु ठाकुर जी की चीज है ठाकुर जी का हमारे ठाकुर जी का घर है ठाकुर जी की संपत्ति उसको ठीक करके लगाएंगे और कर देंगे तो हमारी अहिंग करो हमारा अब बाकी ध्यान देते हो भाई बाबा जी का देखा बताओ भाई हमारे पक्षा अपने चादर पेड़ लिए समझ लो चल जी इतना दिन हमने यहाँ फल में खाया क्यों खाओ अब राजा आ गया कर कर कोई खा नहीं इस बार हम लड़े में तुम आ गए क्यों लड़ाई करो एक दिन जा रहे हैं उस दिन बेटा पोता तुम करो बेटा हम काम करो हम तो जाएंगे बिल्कुल मौज से प्रसन्न खाते जाओ मारो धन रह गया मारा बेटा रह गया गुरु शिवाय रोड़े गए कुछ नहीं मिलेगा आज हमारा है ही नहीं हमने काम कर दिया वो काम धंधा हमने कर दिया अपनी ड्यूटी बजा दी अब जाओ हमें हमने अपनी कथा सुना अभी समय हो गया अब पधारो और सुधार जाओ और सुनाएंगे जो आ जाएगी अच्छी मंदिर जैसी कहानी आ जाए याद आ जाए रोवे जो त्याग करे सोई साध है लाल मरे सोई क्या है मूल लाभ मरे उसमें साथ लग जाए चिपक जाए हमारा श्रद्धा है हमारा सत्संग है हमारा सत्संग वहां क्यों चला गया उस सत्संग में पंद्रह क्यों गया हमारा यहाँ पर तू उछाल कर भाजो ना तो मा देगा ना सारा न हो रहा है न पिंड पीगा सो खिला जाओ साहब अरे कैसे सुनो कि मैं दुआ इस तरह हाँ बहुत अच्छी बात जहां बढ़िया लगे यहां पधारो यहां सिने जहां सिने से पधारो तुम सबका सब ग्राहक एक दुकान पर ही आ रहे हैं कोई फायदा है अलग अलग दुकान है अपनी पंद्रह ग्राहक को माल बढ़िया लगे वही जाओ भाई और बढ़िया लगे क्या जो कहीं गाँव नहीं रहते हैं सो जिसको गाता उसी नहीं वो ही बढ़िया जहां बढ़िया लगे वो बड़े आनंद से तो गलतियां हमने ली हम लोग त्याग कर जो प्रश्न है क्या हम लोग त्याग धन कैसे मिलेगा बताओ तो धन कैसे मिलेगा ये लोग का त्याग है अरे लोग नहीं रहे तो प्रश्न कैसे उठे लोग गलत याद कर दिया धन कैसे मिले लोग कोई जानवर होता यही तो है लोग डर के से मिले हर कैसे मिला है और लोग क्या कर मिला वाह वाह बोलो लोग काम क्या कर रहे थे धन के धन ले बताओ लोग अरे ज्ञान बढ़े तो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है लोग तो नहीं आएंगे तो जिज्ञासा है ये तो मुमुक्षा है लोग तो परे ही चीज थारी है नहीं फिर तो आ है गई मानी ज्ञान हमारा प्रभु हमारे उसका हमारे लोग ये लोग तो नहीं है ये तो हमारी चीज है हमारी चीज को मानते नहीं पराई चीज जोड़ है पराई चाहते ये है बेईमानी अपने प्रभु है मेरे प्रभु है मेरी माँ है मेरी माँ को दिन जाऊंगा ऐसे तो मेरे माता फिर हमारे भगवान हमारी माँ है हमारी है ये तो हमारी ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि परिवार धन संपत्ति घर ये अपना नहीं है अपना था नहीं पहले अगर रहेगा नहीं भगवान पहले हमारे थे अगर ही हमारे रहेंगे अभी भी हमारे हैं हम विमुख हुए हैं भगवान विमुख नहीं हुए हैं हम भूले हैं भगवान हम नहीं भूले उनकी इच्छा करें लोग थोड़े बोलो बोलो प्रश्न बोलो जीवन का लोग शुद्ध हो गया ठीक लोग त्याग करने पर जीवन का निर्वाह कैसे होगा तो लोग करने से जीवन का निर्वाह हो जाएगा ठीक सर लोग सब लखपति हो जाते हैं क्या लोग का धन के साथ संबंध है नहीं नरकों के साथ संबंध है धन का संबंध उद्योग के साथ है कर्म है जो पूर्व किया हुआ अपराध जगह जो उद्योग कर्मों का धन का संबंध है इच्छा का लोग का संबंध है ही नहीं धन के साथ इन दिन मात्र ये तो समझ नहीं है बात है धन का संबंध कर्मों के साथ है वो कर्म से वर्तमान का हो चाहे पूर्व का प्रारब्ध हो कर्मों के साथ धन का वस्तु का संबंध है संसार मात्र का संबंध क्रिया और पदार्थ का संबंध है हमारे साथ अक्रिय परमात्मा का हमारा और हमारे परमात्मा हमारा संबंध वहां है लेकिन हमारा है ही नहीं वो तो जो लिखा है वो मिलेगा ये दस मंदिर नहीं तक परेशान हमारा है वो आकर धकमार के आएगा हमारे पास गर्व करके आएगा हमारे निर्वाह की चीज हम परवाह नहीं करेंगे तो खुला आएगा और परवाह करेंगे हमारे को कठिन बनाएगा ध्यान देना मेरी बात फिर सुन लो हम चाहना करेंगे निर्वाह की चीज मिले तो वह कठिनता से मिलेगी और हम बिल्कुल चाहना छोड़ दें तो सुगमता से मिलेगी बट आओ सामने आ जाए हाँ तो बहुत मन बेचार ना मारी जा रही तू मतलब मर जा नहीं तुम्हारी सूरी में ब्याह करना अब बोलता ना वही नहीं पूछ तो भाई नहीं पूछो मेरे सूरी में ब्याह करना मरता नहीं मारे जाने जो सूरी मारी जो ठाकुर जी की है अरे मैं तो काम कर रहा महाराज आपकी कन्या है इसको कर ढूंढना तैयारी करनी है हमारा काम बस तो आप भेजो तो लगा देंगे नहीं तो जयराम जी हम कैसे बना देंगे नहीं बने तो हमारी कुमारी बेटी को चिंता करेगी हम क्यों चिंता करें उसके लिए क्या हमारी बेटी है ठाकुर जी जो पूछे तो आपकी बेटी नहीं है क्या ये बड़े बाप तो आप ही हो हम तो सोचे हैं घर मेरे बाप तो आपको लग जा नहीं है शर्म नहीं आ रहा तो हमारे क्या शर्म है बड़े मालिक तो आप हो नहीं तो बहु गाड़ी को देखे सूत्रे भी फूट गई बहु को शर्म आ गए क्या सूत्रे को शर्म नहीं आ रही मेरे में क्या आना इस वाले तो शर्म पैदा क्यों होती है धन की क्या आना है इस वाले की मूल तो वही है पूछो खूब पूछो तो या दूर तो क्या भी होता है हमारे हिसाब से ना हुआ है, मेरे को कई बातें कहना आता है क्योंकि बहुत बड़े रोगन बोलते हुए आदमी की अभ्यास कर ले सफल हो जाएगा, व्यापार करना व्यापार में शुक्र हो गया, मेरे को बैठा है दुकान पर तो क्या करूँ मैं, फिर मान तो वही संत हो गए पूछे चलते लगी बात सुन ली अरे संगति में जो है गलती होती है, वे देखो संसार का काम करते हुए कुछ न कुछ संकल्प विकल्प रहते हैं तो पहले का संकल्प रखो और फिर भी आवश्यकता होने पर स्वतः आएगा और इच्छा रखने से मेहनत करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी, आएगा उतना ही, नहीं तो चिंता फिक्र नहीं करना पड़ेगा स्वतः आ जाएगा। आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है, लड़की आपके घर जन्मती है तो अपना भाग्य लेकर आती है, आपके भाग्य के भरोसे नहीं जन्मती, चिंता आप लोगों उद्योग करो परिश्रम करो। देखो ये मोटर चलती है ना, मैंने पहले बताया फिर सुन लो, मोटर का एक तो इंजन चलता है भीतर से, एक बार से चक्के चलते हैं, ठीक है ना, तो चार अवस्था होती मोटर की, एक ब्रेक में खड़ी ना चक्का चलता है ना इंजन चलता है, एक अवस्था, और एक अवस्था है जो स्टार्ट करती है इंजन तो धड़ 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 करता है चलता है नहीं, इंजन तो चलता है चक्के चलते नहीं, एक अवस्था है जो चलते चलते आ रही खूब नीचे जमीन और सब जंगल है किसमें सब चीज का है साफ साफ कोई खतरा नहीं, और तेल में चला करके तेल बंद कर दिया इंजन तो चलता नहीं चक्का चलता है, इंजन नहीं चलता चक्का चलता, और एक तो इंजन भी चलता है चक्का ही चलता है, चार अवस्था हुई कल तो 5 रुपया से बोल दो भाई क्या ही है, ऐसे मन की चिंता है ये तो है भीतर का इंजन का चलना और बाहर जो काम है चक्का का चलना, तो ये तो सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, भीतर में इंजन तो पड़ा है जो कहते हो और बाहर का काम हो रहा है, तो बढ़िया से बढ़िया रास्ता वो है जो मुसाफिर जो हो जाए तेल खर्च हो ही नहीं, वो युक्ति बताई होगा, भीतर में संकल्प है ही नहीं बाहर से काम करें अच्छी तरह से तो चक्का तो चले और तेल खर्च हो ही नहीं, तेल है ही नहीं, ये बढ़िया होता सबसे, क्यों खरीद पर क्या काम करे दोनों खर्च होते भीतर ही खर्च हो, तो लोग क्या कर रहे हैं कि भीतर का इंजन तो चला बाहर का काम करे भी, काम न्यायुक्त करेंगे नहीं काम करेंगे नहीं चिंता करेंगे एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा क्यों भैया तेल बाला है चलो सर कैसे बढ़िया बात है,
ये प्रवर्तन खुश करना स्टेडियम बीकानेर में दिनांक 29/8/81 प्रातःकाल 8 बजे को,
और मैं उसके अंदर लग जाता हूँ, यदि भी आचरण में कुछ नहीं आता है परंतु मन में उसका असर नहीं होता।
नारायण नारायण
मेरा स्वभाव ऐसा है और उसमें तो
सुरावन का देश होने पर दुख पैदा हो गया, क्या करूँ मैं सब पैदा करूँ ऐसा क्या है, ऐसा दुख पैदा हो गया और दुख जब दिया नहीं स्पष्ट नहीं किया, साफ साफ देखिए जितना ही दोष साफ नहीं करता उतना ही आपसे उस दोष का संबंध विच्छेद हो गया। ये तत्व है, साधक दोष देखता है तो उसे घबराता है, क्या करूँ इतने मेरे में दोष है, परंतु घबराता है वो तो अच्छा है, दोष से गिरानी हो गया उतना अच्छा है, परंतु ये दोष मेरे में है ऐसा न माने, ध्यान देना साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है कि दोष मेरे में है ऐसा न माने, तो मेरे से दोष दूर जा रहा है, जैसे आंख में अंजन लगाया हुआ अंजन आंख को नहीं देखता, दूसरी चीजें सब देखती है और अंजन नहीं देखता, ऐसे जब तक अवगुण अपने में रहता है तब तक अवगुण साफ नहीं देखता, बहुत दिखता दिखता नहीं अवगुण, और अवगुण दिखने लगे तो समझना चाहिए कि अब कुछ मेरे से दूर हुआ है, दूर अगर न होता तो ये दिखता कैसे, जितना स्पष्ट दिखे साफ दिखे उतना ही अवगुण अपने से दूर हो रहा है, दूर जा रहा है, अत्यंत दूर भी वस्तु आप से नहीं दिखती, अत्यंत नजीक भी नहीं दिखती, ठीक थोड़ी सी दूर होती तो दिखती है, ऐसे अवगुण जो दिखते हैं अपने से थोड़े दूर गए तो उसमें प्रसन्नता आनी चाहिए, अब दोष मेरे में नहीं है और ये दोष मेरे में था वो निकल गया है और निकल रहा है और ये मिट रहा है, ऐसा माने। भूल इस समय में होती है वो साधक अपने में मान लेता है और अपने मैं सरल हूँ, मैं एक ठीक देखने वाला हूँ, कपट नहीं रखता हूँ आदि आदि ऐसे अभिमान को पकड़ लेता है और देश दोष मेरे में है ऐसे मान लेता है, ये गलती होती है, अपने में दोष को मान लेना बहुत बड़ी गलती है, अपने में मान लेने के बाद दोष को सत्ता मिलती है, दोष की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपकी स्वतंत्र सत्ता है, और अपने में दोष मानने से आपकी स्वतंत्र सत्ता है वो सत्ता दोष को मिलती रहती है, वो जो जीता ही रहता है उम्र तक, तो आपकी सत्ता मिल गई आपका बल मिल गया उसके बाद वो उम्रता नहीं अपने में है नहीं, तो एक तो ये पहचान हुई योगी में, दूसरी ये पहचान हुई अपने में अगर दोष हो तो सब समय में देखना चाहिए, जब तक मैं हूँ ये ज्ञान रहता है उसके साथ साथ ही ये दोष मेरे में है हरदम ऐसा रहता है क्या, हरदम दोष नहीं रहता, दोष आगंतुक होता है तो मेरे में दोष कैसे है, ये बहुत बड़ी गलती है, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से अपने में दोष को मानना बहुत बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि दोष को निमंत्रण दे करके बुलाते हैं हमारे से यहाँ से कहीं चला न जाए, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए तुम्हारा तो ये खास घर है, इस तरह से उसको निमंत्रण दे करके आग्रह करके आप रख रहे हैं, इस बात से हमारे में दोष नहीं है और दोष दिखता है तो अब क्या रहा है, दोष मिट रहा है और मूल में मेरे में दोष नहीं है, क्यों कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि का, ईश्वर अंश जीव अविनाश नित्य रहने वाला है और चेतन है ये ज्ञान स्वरूप है, अमल अमल कहना मलिश में नहीं है, मूल में मर्द नहीं ये सच्ची बात है, और सहज सुख राशि है जिन्हें दूसरे से सुख चाहता सहयोग से ये गलती करता है, सहज सुख राशि स्वाभाविक ही जब दूसरे की तरफ से वृत्ति अपने में स्थिति होगी तब सहज सुख मिलेगा, सहज ना सुख काली पंडिता ना सुख भू गया सुख सहजा ही आवश्यक कृष्णा रोग गया, ये जो दूसरे से सुख की इच्छा है लेता है ये मिटने से सहज सुख प्रकट होगा, सहज सुख और सहज सुख से मन स्थिर होगा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निज सुख गन मन हुए कि खीरा, निर्सुख में निर्सब सुख नहीं मिला पर मन स्थिर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कठिनता है। निर्सुख मिलने के मन कहीं जाएगा ही नहीं, तो निधि सुख मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा, पास नहीं मिल जाएगा सुख तो फिर वो मन जाएगा नहीं। तो निध सुख के मिलने से मन स्थिर हो जाएगा, इंद्रियों की निवृत्ति आप जाप हो जाएगी। इसलिए ये समझना अपरिमित दोष नहीं है, ये बात ख्याल करना खूब। और ये दोष पुष्ट होते हैं एक तो अपने दोष मानने से, एक दूसरे का दोष देखने से, और दूसरे के दुख की तरफ परवाह न करने से। दूसरे के दुख की परवाह न करने से अपने में दोष स्थित होता है, कायम होता है। दूसरे को कैसे मेरे द्वारा सुख हो, उससे पहले कि मेरे द्वारा कहीं दुख तो नहीं हो रहा है, एक एक बुद्धि का ख्याल रखे, हरदम सावधान कि मैं बोलता हूँ किसी किसी दुख तो नहीं होता है, मैं चल रहा हूँ इसमें किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, मैं बैठा हूँ यहाँ बैठता हूँ किसी किसी को विशेष नहीं हो रहा है, मैं कोई क्रिया करता हूँ दूसरे को दुख तो नहीं हो रहा है। ये तो गीता में कहा सर्वभूत हिते रहता लभंते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसमें भी सर्वभूत हिते रहता बताया करते प्राप्त मंत्री मामले वो प्राप्त होते हैं वहां भी सर्वभूत हिते रहता बताया। तो निर्गुण के तत्व की चाहे प्राप्ति चाहता है, चाहे वो सगुण तत्व की प्राप्ति चाहता है, परंतु दूसरे को दुख न हो इस वृत्ति की बड़ी भारी आवश्यकता है। दूसरे की चीज दे देता है, दूसरे को दुख दे देता है, कष्ट दे देता है, तो उसमें जल्दी स्थिति नहीं होती। मन से स्थिति होने पर भी दृढ़ता से नहीं होगी। और ये अगर ख्याल रखा जाए तो मेरे द्वारा दुख न हो, किसी के भी मन के विरुद्ध नहीं करना है और सिद्धांत के विरुद्ध तो करना ही नहीं। संत महात्माओं को सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, भगवान का सिद्धांत है, उसके विरुद्ध तो बिल्कुल कभी कहना ही नहीं है। चाहे नार कर जाए, गड़गड़ा कर जाए, मर जाए, उठे नहीं करना है, नहीं तो उसका बड़ा अपराध होता है, महान अपराध होता है। उसमें लिखा है कि जैसे अपने में दोष है तो बड़ा सुंदर रूप है। ये परमार्थ पत्रावली पहले भाग में है वो पत्र, और वो पत्र लिखा है शेर जी ने भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार को, बहुत पुराना पत्र है। उसमें लिखा है कि जैसे सोनार की पुचाली होती है, एक मिट्टी की बनाई हुई कटोरी होती छोटी सी, उसमें सोना डाल करके सोनी को तपाते हैं, वो तो बहुत जल्दी जल जाता है, परंतु उसमें विजातीय धातु होती है वो जल्दी नहीं जलती। तो ये जो अपने अंतःकरण में पूरा करके है वो तो जल जाता है, परंतु विजातीय धातु जो है दूसरे को दुख देना, दूसरे की चीज लेना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे के अवगुण की तरफ देखना, उनका अपराध कर देना, शास्त्र का संतों का अपराध मन के बीच चलना, ये उसमें एक विजातीय धातु बढ़ जाएगी, तो इसका जलना कठिन हो जाएगा। परंतु वो आप जलाते जाओ, ये साधन रूपी आग है, सत्संग रूपी धूप है, ये लगती रहेगी हरदम, तो वो जलता रहेगा, वो जलता जलता साफ जल जाएगा, तो स्वच्छ हो जाएगा। सोना तो शुद्ध है ही, तो स्वरूप का आपका शुद्ध है ही, उसमें ये मिला लेते हो अपने मित्रों से, ये मिला हुआ है इससे मृतक चला जाएगा। तो सबके हित की भावना हो, किसी का भी अहित न हो। अहित होता है ये बहुत बड़ा भारी नुकसान करता है। और हित करते करते गीता ने परम योगी माना है, किसको? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्चिद योगिना सुखम वायरिवा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे अपनी चीज कोई ले जाए तो बुरा लगता है, अपने में कोई दोष देखता है तो बुरा लगता है, अपनी कोई निंदा करे तो बुरा लगता है, अपना कोई तिरस्कार करे तो बुरा लगता है, हमारे मन के विरुद्ध करे तो ये बुरा लगता है। ऐसे अपने सोचे स्वयं आत्मोपमेन, अपने शरीर की उपमा लेकर देख रहे कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसा लगता है, तो जहाँ ये मालूम हो ऐसा बर्ताव मेरे को बुरा लगता है, ये बर्ताव आप किसी तरह भी नहीं करेंगे। ये जो हमारे को बुरा लगता है बर्ताव, इसका अर्थ क्या है? योगी आदमी तो इसका अर्थ करता है कि अपने सुख लगे जैसा करना है, बुरा लगे जैसा नहीं करना है। यदि ये बुरा बर्ताव करता है तो इसका नाश करना है, इसको हटा देना है, इससे बच जाना है, ये विचार करता है। वो योगी होता है, और जो साधक होता है उसकी सावचेती होती है कि ये जो मेरे साथ बर्ताव करके बुरा लगता है, इसका अर्थ है ऐसा बर्ताव किसी के साथ मैं न करूं। ये तो केवल शिक्षा दे रहा है, और वो दुख लगता है हमारी उन्नति के लिए आता है, इस बात को पूरा दुख दे रहा है। उनका आचरण मेरे से विरुद्ध होने बुरा लगता है, तो ऐसा आचरण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा पक्का विचार कर रहे। क्योंकि आचरण बुरा लगता है, चुभता है, हमारी भी चुभता है, औरों को भी चुभता होगा, और पक्की बात चुभता ही है कि हमारे चुभता है। तो आत्मोपमेन शरीर की उपमा से और सुख और दुख को देखता है। आत्मोपमेन सर्वत्र, केवल मनुष्य में नहीं, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, कहीं भी समम पशु देवगुरु, क्या समम सुखों का यदि समम पशु, सुख और दुख को समान देवता है। जैसे शरीर में कहीं भी दुख नहीं हुआ था समान रीति से, और कहीं भी आराम होता अच्छा लगता है समान रीति से सब शरीर में, इसी तरह से मात्र जीव में कहीं भी हमारे द्वारा शरीर से, मन से, वाणी से, भाव से, किसी रीति से भी अगर दूसरे के दुख में सहमत होते हैं तो जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होगी। मनुष्य की बड़ी कमजोरी है, भजन ध्यान साधन करने को तो साधन मानता है, और दूसरे कष्ट देने में कोई क्या है, किसी विपरीत करता है। वर्षों तक साधन करते हैं वो सत्संग से सुधार नहीं होगा। और ये या ठीक अच्छी तरह से तो कम से कम कम से कम कम से कष्ट न हो, सो देना आपका दूर रहा, अच्छी बात सेवा करो तो न करो तो कोई इतनी हानि नहीं, दूर देने से कोई जो कष्ट पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, कोई भारी हानि है। इससे खूब बचो, जितना इससे बचोगे इतना ही अपने सुख की कामना दूर होगी। जानते ना प्रश्न तो था सुख भोग का, और ये कैसे लाए, सुख भोग की वृत्ति दूर होगी जब दूसरे का दुख अपने को चुभने लगेगा। दूसरे का दुख है वो अपना, हमारा दुख दूर करना सुख हो जाएगा, और दूसरे का दुख अपना दुख हो जाएगा। आत्मगंभीर कहने का मतलब किसी में कहीं भी दुख है तो वो दुख अपना होगा, अपना दुख है। जैसे अपना दुख दूर करने के लिए मनुष्य की स्वतः चेष्टा होती है, इसी तरह से ही दूसरे का दुख देर करने स्वतः चेष्टा हो जाए। तो ये सुख भोग की जो रुचि है ना मन में, विशेष संयोग से सुख भोग की रुचि ये मिले। जब तक दूसरे के दुख की परवाह नहीं, अपना सुख लेता है, तब तक अपने सुख की वृत्ति सीखते नहीं। हम दुख नहीं देते हैं, फिर दूसरे दुख देखने की जरूरत क्या है? तो अपने जो सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, इसके मिटाने के लिए दूसरे दुख देते तो दूर कैसे हो, ये चिंतन हो जाएगा। अपना सुख बुद्धि अपने सुख भोग की रुचि मिल जाएगी। इस बार संतों की रचना मिलेगा पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख दुख दूसरे का दुख उनका दुख होता है, और सुख होता है पर भोग सुख होता है। ये संतों की लक्षणों में गोस्वामी महाराज ने उत्तर मिलेगा पर दुख दुख और सुख सुख देखे पर दुख तो दुख है पर सुख देखे पर सुख है। तो दूसरा सुख देखे किस तरह से इनमें दुख मिल जाए, ये एक लालसा के चलते हो जाए और दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति हो जाए तो अपने सुख भोग की इच्छा मिल जाती है। इस वजह से अपने सुख भोग की इच्छा रहने से ही भोग मन जाता है, जिसमें दो ही चीज है। भोग ईश्वरी प्रसन्न कारण बताया ना, तो भोग ईश्वरी क्या संतों ने कहा कनक कामणी, संतों ने कहा दमड़ी चमड़ी, मैंने पढ़ा वाणी दमड़ी चमड़ी दिया है, कहीं आया है कनक कामणी, गीता ने कहा भोगेश्वरी। तो दमड़ी चमड़ी क्या, किसने आसन थी चमड़ी की, और कैसे होगा दमड़ी की, जमड़ी चमड़ी ये दो बोल और कनक कामणी को माधुरी जी से मिलना कैसे हो, सबल बैरी बसे गत भीतर कनक कामणी दो, ये दो ही बैरी है। यही बताया है गीता ने कि भोगेश्वरी भोग है वो तो आश्रम का भोग, और ऐश्वर्य करके लेना चाहिए। किंतु में आश्रुति होती है उसकी निश्चय बुद्धि नहीं होती है, परमात्मा प्राप्ति करना है ये बेरोजगारी होती थी समाज में बुद्धि है। इन बातों में दूर हो, ये कब दूर होती है, सुगमता से दूर हो जाए इस तरह बुद्धि की बात। दूसरा हित कैसे, इससे पहले अधिक लोग कम से कम दुख नहीं हो जाए हमें किसी क्रिया से, दुख न हो जाए। और आज हमारे यहाँ देश में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। जैसे ये मतीरा होते हैं जो टीका लेने के लिए मतीरा होते हैं, तो यहाँ मतीरा न होने से उनकी मन बहुत आती है, मतीरा नहीं जमाना हो गया, मतीरा नहीं होगा कम हो गया, तो मतलब जो वो होता है जब मुझे होता ही नहीं मन नहीं आती, आम होते हुए आम की फसल ही मन में आती है। ऐसे हमारे यहाँ उपकारी आदमी ही ज्यादा हुए, साथ हो गए कम, वो उपकार न होने से आज भूख लगी है हमारे देश में। मोटर चलती है तो सामने साइकिल चलते रहे, ऐसे चलते बड़ो ही नहीं करते, मार्ग में खड़े है तो विचार नहीं करते, छोटी छोटी बात में ख्याल रखो किसी को दुखेम नहीं होगा हमारे आने से, ऐसा विशेष ख्याल रखो होगा तो अपने सुख भोग की रोटी मिटेगी, वो मिटेगी तो ये रोटी ठीक हो जाएगी। हम उस वृत्ति की तरफ ही ख्याल करते हैं, ये हमारी वृत्ति मिटे, अरे ये मिटे तो इसमें कारण क्या पड़ा है, कहां से उत्पन्न हुई है, उसे कारण की खोज करके वहां से दूर किया मिल जाएगी। काम और क्रोध कुछ मिटाना चाहते हैं, काम क्रोध के कारणों को मिटाना नहीं चाहते,
पढ़ी है तो पढ़ी
पेंसिल पेन या पेंसिल क्या है?
नहीं बंदी थी
एक ही है।
हाँ एक ही है।